ओम शांति। कल्प का अंतिम युग पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग की टिक टिक करती अंतिम घड़ियां और अंतिम घड़ियों में स्वयं परमपिता परमात्मा के दिशा निर्देशन में साकार बाबा द्वारा तराशा गया एक अनमोल हीरा, जिनके हर कर्म में परमात्मा शिव बाबा की शिक्षा एवं अनमोल वचनों की छवि दिखती है और ज्ञान योग की चमक जन जन तक पहुंचकर लाभान्वित करती है एवं वैर मुक्त बनाती है। ऐसे अनमोल रतन को बाबा ने नाम दिया निर्वैर। हम सभी भ्राता निर्वैर जी का एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस यज्ञ के एक मजबूत स्तंभ भ्राता जी, भाई साहब कह रहे हैं दो हाथ की ताली भी बजा सकते हैं।
इसमें आपका भी स्वागत है साथ में, इसलिए दोनों हाथ की ताली।
इस यज्ञ के एक मजबूत स्तंभ भ्राता जी का जन्मोदय पंजाब में हुआ। आपने अपनी लौकिक शिक्षा प्राप्त करके 9 वर्षों तक भारतीय नौसेना में देश की सेवा की और सत्य की खोज में सदैव रहते थे। इसी खोज में आप सन 1959 में आपको सत्य जीवन सत्य पिता का परिचय प्राप्त हुआ और साकार बाबा के साथ बिताए गए क्षणों से अत्यंत प्रभावित हुए और सन 1963 में अलौकिक सेवा हेतु अपना सर्वस्व प्राण प्यारे बाबा को सौंप दिया। तब से आज तक आप अनवरत बाबा की आशाओं के अनुरूप देश विदेश में कई सेवाओं को प्रतिपादित करते हैं। वर्तमान में आप इस बेहद यज्ञ के लिए इस विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके अनमोल वचनामृत के लिए हम सभी आत्माएं लालयित हैं। आज का विषय है संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यर्थ संकल्प समय की बचत। आदरणीय भ्राता जी,
थैंक यू। ओम शांति। सभी देश और विदेश से आए हुए सब बहनों और भाइयों को मधुबन आने की बधाई हो। क्योंकि ऐसे शुभ दिन पर आए हैं जो 2015 का अंतिम दिन और 2016 का शुरू होने का खास बाबा से मिलन के लिए आए हैं। सिर्फ बाबा से नहीं, लेकिन यज्ञ की जो भी विशेष बड़ी दादियां हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, सबसे मिलना हो जाता है। नाम तो क्लास होता है और क्लासेस तो आप पहले ही बहुत करके आए हैं। ज्ञान की कोई एक भी पॉइंट ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन विशेष जब मधुबन आते हैं तो मधुबन एक प्रकार से ये बेहद का अपना घर है, बेहद का अपना परिवार है, उसकी महसूसता मधुवन में आने से ही होती है। एक समय था, मधुबन का बहुत छोटा रूप था। हम जब आए थे पहली बार 13 जुलाई 1959, साकार बाबा मम्मा उनसे मिलने का हुआ था। अब उस समय मधुबन में 15 या 20 भाई बहने रहते थे और हम लोग 6 लोग बाहर से आए हुए थे, 4 बॉम्बे से, 2 जगाधरी से थे। तो उस समय मुरली के फुटनोट में लिखा गया था कि इस समय मधुबन में ब्राह्मणों की रिमझिम है। 6 लोगों के आने से रिमझिम हो गई थी और आज बाबा के कितने बच्चे आए हैं। अभी तो प्रैक्टिकल रिमझिम देखने में भी आ रही है, सबके चेहरे पर देखो तो हमेशा खुशी, नैनों में वो चमक। और एक दो के लिए बस विश करने का एक ही तरीका है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो ओम शांति का जैसे समुन्दर बन गया है शांतिवन। आज के दिन खास तो हम सबको बहुत इस बात की खुशी है कि हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी आपसे सुबह मिले हैं। उनका मिलना क्या सिद्ध करता है कि दादी बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, दादी रतन मोहिनी भी मुरली सुनाती रही हैं, कल तक शाम को भी मिली हैं, तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के दिन के हिसाब से हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी, जिनके द्वारा हम सब किससे मिलना चाहते हैं? दादी से नहीं मिलेंगे भाई, दादी से नहीं मिलेंगे तो बाबा से कैसे मिलेंगे। तो बहुत खुशी है कि दादी जी बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपने प्यारे शांतिवन में 27 तारीख को आ गई थी और बहुत उमंग से सबसे मिलने के लिए विशेष उनका लक्ष्य है, क्योंकि सबको नए साल की मुबारक देनी है। तो ऐसे शुभ दिन पर हम सब क्या करेंगे? सभी बाबा के बच्चे नया साल का स्वागत करने के लिए, पुराने साल को विदाई देने के लिए क्या संकल्प करेंगे? ये विषय जो मुझे दिया गया है उसमें वो सब समाया हुआ है। एक तो संपूर्ण स्थिति प्राप्त करना, इसमें लिखा हुआ है करने के लिए। सभी चाहते हैं कि हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें, एक ही हाथ खड़ा हो रहा है। अच्छा, संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण स्थिति आई और गए, ऐसा नहीं है। और फिर इसके साथ में लिखा है व्यर्थ संकल्पों एवं व्यर्थ समय की बचत, बचा के क्या करेंगे आप उसको? पढ़ने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के बाद संकल्प चला कि व्यर्थ संकल्पों को बचाना, माना आपके पास ही रहे वो, तो आपकी जेब में ही रहे, हाँ? और फिर उसके बाद समय की बचत, व्यर्थ समय की बचत, व्यर्थ समय जो चला ही गया तो बचत कहां से होगी? लेकिन भाव टॉपिक लिखने वालों का मैं समझ गया हूं, सबसे पहले तो हम सब बच्चों को, बाबा के बच्चों को, ब्राह्मणों को, ये एक विशेष खुशी होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। सारी दुनिया आज के दिन तैयारी करते हैं नया वर्ष मनाने की, और उनके मनाने का तरीका अपना है, लेकिन यहां पर ये ईश्वरी परिवार का इतना बड़ा संगठन, इसको क्या कहें, रूहानी मेला कह लो, संगठन कह लो, ईश्वरी परिवार का मिलन कह लो, आपस में मिलते हैं तो एक दो को देख करके खुशी होती है, हृदय गदगद हो जाता है। क्यों? यूं तो कई बार मिले होंगे इस कल्प में भी, लेकिन फिर भी कहने में आता है कि कल्प के बाद फिर से आज मिल रहे हैं। ऐसे है, कल पहले यहां बैठे थे, याद है आपको, इसी सीट पर, इसी हॉल के अंदर, या कल के बाद चेंज हो जाएगा? हाँ, पक्का याद है? तो इस बात की खुशी कि कल्प कल्प के हम बाबा के सारे विश्व से चुने हुए बच्चे हैं जो बाबा से सन्मुख मिलन मनाते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बाबा ने ये तो जरूर कहा है कि कोई एक भी आत्मा संसार में रह ना जाए जिसको बाबा के इस धरा पर आने का संदेश ना मिले। संदेश जरूर मिल जाएगा, पीएम टीवी के द्वारा मिल जाएगा, दूसरे चैनलों के द्वारा मिल जाएगा, अखबारों के द्वारा मिल जाएगा, प्रोग्राम्स के द्वारा मिल जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद, उस सारा संदेश मिलने के बाद भी यथार्थ रीति जो बाप दादा के वर्तमान समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो उनका पार्ट है उसको समझ करके और उनके साथ अपना जो निजी संबंध है उसको पहचान करके, ऐसे मिलने वाले बाबा के बच्चे कितने हैं? साल भर में मुश्किल से 2-3 लाख मिलते हैं, और 2-3 लाख में से भी ऐसे हॉल के अंदर बैठने वाले कितने होंगे? वो भी 1.5 लाख के करीब होंगे, बस 1.5 नहीं तो 1.75 लाख तक, क्योंकि ये हाल की कैपेसिटी 20,000 की है, इससे ज्यादा बैठ नहीं सकते अंदर। इसलिए शायद भाई बहने समझते होंगे अंदर जगह मिले ना मिले, इसलिए कोई पार्क में बैठे हैं, कोई प्रकाशमणि स्तंभ के पास बैठे हैं, कोई धूप में, थोड़ा रात को शायद नींद ठीक नहीं की तो सो भी रहे। लेकिन विशेष आज का दिन, जैसे बहनों ने सुबह भी बताया, आज साल का अंतिम दिन है, अंतिम दिन सब हिसाब किताब अपना देखना चाहिए। सारे वर्ष में हमने किस तरह से सारा वर्ष बिताया है, क्या बाबा को पहचानने के बाद निरंतर योगी की स्थिति रही, अपना चार्ट देखने के लिए कुछ बातें सामने आती हैं। निरंतर योगी की स्थिति रही, जो निरंतर योगी की स्थिति में रहे होंगे वो बहुत पीसफुल रहे होंगे, कभी भी अशांति का संकल्प तक नहीं आया होगा। और साथ साथ आपके उस समय के, हर समय के प्रकंपन जो हैं, वाइब्रेशन जो हैं, वो चारों तरफ शांति फैला रहे होंगे और आपको देखने से, दूर से कोई भी पहचान लेंगे ये तो कोई विशेष आत्माएं हैं, ये साधारण नहीं है। भले आपने सिंपल सफेद कपड़ा पहना हो या रंगीन कपड़ा पहना हो उससे कुछ नहीं है, लेकिन आपकी मनोस्थिति क्या है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं फेस, अंग्रेजी के शब्द हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में क्या चलता है उसका अक्स चेहरे पे आता है। तो जितना जितना सूक्ष्म रूप से मनमना भव स्थिति में रहेंगे उतना उतना चेहरे पर भी वो चीज आती है, होंठों पर भी आती है, नैनों में भी आती है, वाइब्रेशन भी आते हैं। चाहे आप किसी से बात करो या ना करो, लेकिन एक बड़ा खुशनुमा वातावरण बनता है। अब एक बात तो ये पहली देखनी है कि सारा वर्ष जो बीता, इस सारे वर्ष में कहां तक मैं अपनी स्थिति को बना के रखा। दूसरी बात, संगम युग का एक एक सेकंड बाबा कहता है आपका बहुत बहुत वैल्यूएबल है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब व्यर्थ गंवाने का भाव तो समझ गए, व्यर्थ संकल्प आएंगे या व्यर्थ कोई मुंह से शब्द निकल जाएंगे, फिर बाद में पश्चाताप होगा। तो ऐसा कितना समय हमने अपना बर्बाद किया उसका भी थोड़ा हिसाब लगाना चाहिए। कई व्यर्थ चीजें पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, वो भी तो वेस्ट ऑफ टाइम है। उस हिसाब से हमें बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुसार हमने कितने तक ध्यान रखा, जितना ध्यान रखा होगा उतनी कमाई ज्यादा की होगी, और जितनी कमाई ज्यादा की होगी उतना ही खुशी का पारा चढ़ता गया होगा। तो सारे वर्ष का एक हिसाब लगाना संक्षिप्त में, उसका ये आज का दिन है। और फिर इसके साथ में ये अभी सोचना पड़ता है बाबा की आज की मुरली अनुसार भी दूसरों को भी आप समान बनाना है, दूसरों को भी संदेश देना है। वो मैंने सारा वर्ष कितने तक किया, कितनों के निमित्त बना, कितनों को बाबा के साथ उनका मन लगा करके उनको खुशी का खजाना लेने के हकदार बनाया, वो भी देखना है। क्यों? बाबा ने कहा है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्य आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं। तो आप अपने आप को पुण्य आत्मा समझ करके सोचें कि हमने पुण्य का काम सारे वर्ष में कितने तक किया है। और फिर इसके साथ में पुण्य का काम करेंगे तो किसी को दुख तो नहीं देंगे ना? देंगे? कभी कभी ऐसा कई कह देते हैं भाई कभी कोई बात सिखाने के लिए थोड़ा सख्ती से ऐसा करना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। फर्मनेस एक चीज है और उसका तरीका जो है बाबा की मुरलियां, खासकर अव्यक्त मुरलियों को आप ध्यान से देखेंगे, अव्यक्त मुरलियों से पता लगता है बाबा कितनी बच्चों की महिमा करते 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 और लास्ट में एक दो लाइन सिर्फ बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखो बस। नहीं तो बाबा क्या नहीं कह सकता है, हर बच्चे का सारा हिसाब बाबा के पास है। लेकिन नहीं, बाबा अपने बच्चों की बहुत इज्जत रखते हैं, इज्जत करते भी हैं, इज्जत रखते भी हैं। ऐसा कोई बाप है जो रोज सवेरे सवेरे कहे मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और फिर रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते? कोई बाप ऐसे नमस्ते करता है? सारे आप लोग करते हो, बाप बैठे हैं सामने। हाँ, माताएं तो नाम ही नहीं लिया बाबा ने, बाप का नाम लिया है। लेकिन माता पिता पहले, पहले माता पिता, माता का नाम पहले लिया है। तो ये थोड़ा सोच चलना चाहिए हमारा कि हम कहते बाबा को फॉलो करना है, कैसे करेंगे? तो बाबा की जो बातें हैं सुनते तो बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, उसको प्रैक्टिकल में भी लाना चाहिए। एक दो को देख करके, एक दो के साथ बहुत शालीनता से, बहुत प्रेम से, बहुत आदर से व्यवहार में अगर आएंगे तो दुनिया से बिल्कुल न्यारे और प्यारे लगेंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो आप बताइए व्यर्थ संकल्प आएंगे फिर आपको? व्यर्थ संकल्प आते हैं? जिनको व्यर्थ संकल्प अभी तक आते जरा हाथ खड़ा करें, काफी हैं। तो अभी आज के दिन छोड़ सकते हैं अभी व्यर्थ सोचना? पॉसिबल होगा? छोड़ना चाहेंगे पहले तो उमंग चाहिए छोड़ने का। हाँ, जो छोड़ना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। वाह, तो अभी एक मिनट हम साइलेंस करते हैं। बाबा के साथ दिल ही दिल में वायदा करो कि बाबा आज तक ये जो एक कमी है ये आपको दे देते हैं, आज के बाद मैं फिर कभी भी ना व्यर्थ देखूं, ना व्यर्थ सोचूं, ना व्यर्थ शब्दों का इस्तेमाल करूं। क्यों? हम सब बाबा के बच्चे। एक साइड से बाबा कहता है वो VVIP, उनसे आप और भी बड़े VVIP हो। जज साहब, सिर्फ वहां के VIP नहीं हो, बाबा के भी दिल तख्त नशीन बनने वाले हो। तो जो बाबा के ऐसे महान आत्माएं बच्चे हैं, महान आत्माओं का बोलना चलना बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, मन के दर्पण के सामने हमेशा बाबा को रखो। ब्रह्मा बाबा हम सब के लिए एग्जाम्पल थे, और आज हमारे सामने दादियां हैं, बड़े भाई हैं। बड़े भाई सिर्फ वो नहीं जो तीन भाई, लेकिन और भी बहुत बड़े भाई हैं। हमारे अमीर चंद भाई भी इधर देखने में आते हैं, उनसे कभी आप मिलो, इतना आपको प्यार से भी और हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। ओम प्रकाश भाई जी छुट्टी ले गए वो, लेकिन उन्होंने जिस तरह की सेवा की उसका मिसाल नहीं है। मीडिया का बहुत कार्य किया, उसके अलावा जोन का बहुत बड़ा कार्य किया, और बाबा के बहुत समीप रहे शुरू से लेकर के, मम्मा के बहुत समीप रहे, दादियों के बहुत समीप रहे वो। विशेष आत्मा इस ईश्वरी परिवार की, लेकिन शरीर की लिमिट है। कोई चलते चलते ज्यादा खराब हो जाती है तबीयत, कोई की जरा ठीक भी हो जाती है, मेरे जैसे की। क्योंकि ये सवाल कई बार मेरे से पूछते हैं भाई बहने, अब आपकी तबीयत कैसे है, अब आपके सामने हूं कैसे लग रहा हूं, ठीक है ना? तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऐसे बोलते हैं। वर्ष के अंत में तबीयत अच्छी माना, सब अच्छा ही था। हंसते हंसते सबको एक ही बात कहता था। जज साहब आए थे मेरे पास अहमदाबाद में मिलने, तो मैं यही कहता था कि मैंने 56 साल में कभी आराम नहीं किया था, क्योंकि बाबा ने कहा था बच्चे आराम नहीं करना है, जब तक सतयुग की स्थापना का कार्य पूरा ना हो जाए तब तक आराम नहीं करना है। ये बाबा के तो अभी 56 साल के बाद थोड़ा सा आराम करना पड़ गया, और मैंने सोचा कि ये आराम जो है इसका पूरा सदुपयोग करूंगा। अभी मैं बहुत बहुत आनंद आया उसमें, बाबा के संग के रंग में रंगने का, अव्यक्त स्थिति में। नहीं तो होता है कि व्यक्ति लेटे लेटे बोर हो जाता है, लेकिन मैंने उसका यही अपने मन में पक्का किया कि मुझे एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। बाबा के संग का रंग लगता रहे, बाबा की मुरली का अध्ययन चलता रहे, और बाबा के बच्चों की सेवा जो कर सकूं, लेटे लेटे भी सेवा करते रहते थे, तो उससे मुझे अनुभव होता है कि जितना जितना ईश्वरी ज्ञान की गहराई में जाएंगे और जितना जितना बाबा के संग के रंग में जाएंगे, जिसको हम याद कहते हैं, याद अथवा योग, तो और बातों में एक्चुअली टाइम वेस्ट करने का मन ही नहीं होता है। व्यर्थ बातों में कई बार अखबार में कई ऐसी बातें आती हैं, भाई वो पढ़ने लग जाएं, वो करें, वो नहीं, जी नहीं करता है। लेकिन कहते ना, जब गुंगे को मिठाई का टेस्ट मालूम पड़े, जो उसको मालूम पड़ेगा वो दूसरे को नहीं मालूम पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को ये विशेष वरदान है, इस समय का वरदान है कि इस समय जो ईश्वरी ज्ञान, जिसको सत्य ज्ञान कहें, वो स्वयं पिता परमात्मा वो स्वयं दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा को और ब्रह्मा वत्सों को ऐसा प्रैक्टिकल में हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में रख दिया है कि ईश्वरी ज्ञान के आधार से, राजयोग के अभ्यास के आधार से क्या जीवन होनी चाहिए। जीवन हो तो ऐसी हो जो एकदम सतो प्रधानता में जाए, जो एकदम सात्विकता की बात करें, और व्यर्थ बात में एक सेकंड भी उनके पास टाइम नहीं है। नींद खुलेगी तो भी बाबा की याद में, सोएंगे तो भी बाबा की याद में। इतना आनंद आता है, क्योंकि जो कुछ भी हम सारे जीवन में करते हैं, आप देखेंगे अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक ईश्वरी सुख क्या है वो जब ज्ञान मिलता तभी पता चलता है। तो अभी समय है कि हम बाकी बातों से अपने आप को थोड़ा डिटैच करें, कमल पुष्प के समान अपनी कारोबार करते रहें, बाल बच्चों का ध्यान भी रखें, उनको और ही अच्छी तरह से संभालें, क्योंकि आज के युग में बच्चे नहीं तो कहां से कहां चले जाते हैं। बीच में यहां एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक भाई साहब आए थे जिन्होंने बताया पंजाब में, पंजाब अपना भारत का पंजाब कोई और नहीं, पंजाब में कुछ क्या कहते हैं ड्रग्स ऐसी चीजें कोई आजकल बच्चों को भी खिला देते हैं, बच्चों को आदत पड़ जाती है, और जो बच्चे पहले इतने खेलते थे, स्पोर्ट्स में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, अभी वो एकदम ऐसे हो गए हैं, सिर नीचे करके सारा दिन बैठे रहेंगे। तो सबका भला हो उसके लिए ये ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति से व्यर्थ भी समाप्त हो जाए और साथ में जो आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं उन पर भी विजय प्राप्त कर लें, ये बहुत जरूरी है। और फिर इसके साथ में संकल्प व्यर्थ ना आए, ये बहुत बड़ी बात है। संकल्प बड़ी महीन चीज है। आप देखेंगे जिस समय से हम सुबह को उठते हैं, यूं तो नींद में भी थोड़ा संकल्प होते हैं, लेकिन जब उठते हैं नींद से और जब तक फिर सोने जाते हैं, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब आप संकल्प ना करते। और उसके लिए बाबा ने इशारा दिया है, बार बार कहा है, बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। क्यों ऐसा बाबा कह रहा है? इसलिए कि हम 63 जन्म से, वैसे तो 84 जन्म में ही शुरू से लेकर के कहें, लेकिन नहीं, 63 जन्म से स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं किया, शरीर ही निश्चय करते रहे। तो वो संस्कार जो पक्के हो गए हुए हैं उसको रिप्लेस करना, उसको पूरा मिटा देना और रूहानियत के संस्कार भर जाएं, वो तभी हो सकता है जब जो बाबा कहते हैं कम से कम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आपको आराम के लिए अपने लिए बहुत हैं, 8 घंटे लौकिक कारोबार के लिए बहुत हैं, बाकी 8 घंटे जो हैं वो बाबा की याद, बाबा की मुरली का अध्ययन और बाबा की सर्विस, इसमें अगर लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प का आना क्या सिद्ध करता है? हम बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं है पूरे। सोचना थोड़ा, अगर बाबा के आज्ञाकारी फरमाबरदार, बाबा के शब्द हैं ये, ऐसे बच्चे हैं तो फिर व्यर्थ संकल्प करने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। और जिस समय बाई चांस आए भी, पहले की आदत है आएगा, आना शुरू होगा, तो उसी समय बाबा को अपने मन के तीसरे नेत्र से सामने देखो और बाबा को मन ही मन में बता दो, बाबा मैंने आपसे वायदा किया है कि मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, ये फिर आ गया मेरे पास, आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प चला जाएगा, बाबा आपके पास आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प को बाबा से भी डर लगता है, तो हमें व्यर्थ संकल्प आते हैं उससे डरने की बजाय विजयी बनना है और उसको पूरा जीतना है। तो क्या करेंगे? श्रेष्ठ संकल्प करने का विशेष अभ्यास करेंगे, शुभ संकल्प करने का, श्रेष्ठ संकल्प करने का, सेवा के संकल्प करने का जितना अभ्यास करेंगे। और उसमें भी देखा गया है कि कई बार अपने टाइम की वैल्यू नहीं रखते हम लोग, समय की वैल्यू कितनी है वो बहुत ध्यान चाहिए। अव्यक्त बाप दादा ने खास ध्यान खिंचवाया था कि आप इतनी महान आत्माएं हो, इतनी रॉयल आत्माएं हो, आपका एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। एक सेकंड आपने गंवा दिया, माना आपने अपना एक साल गंवा दिया। सोचिए, थोड़ा छोटी बात नहीं है ये। एक सेकंड गंवाया तो एक साल के बराबर आपने नुकसान कर लिया, और वही अगर आपने एक एक सेकंड का ध्यान रखते, अपने को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से, सरलता से योगी जीवन में ढाल दिया, तो आप बाबा के दिल तख्त नशीन भी हो जाएंगे और साथ साथ भविष्य के बाबा के शहजादे के रूप में सतयुग में आकर के राज करेंगे। तो समय की बचत बहुत जरूरी है। बचत का मतलब, बचत करते हैं, कई ऐसे भी करते हैं, सोए रहते हैं, भाई समय को बचाना है, क्या करना है, और वो बचत नहीं है। जितना हो सके इस संसार को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसका संकल्प करना है, और उसके लिए बाबा ने जो खास सूक्ष्म सर्विस करने के लिए ध्यान पर दिया है कि जितना हो सके बाबा की याद में अपने परकंपन, अपने आसपास, अपने देश में और सारे विश्व में फैलाने का संकल्प रखो। बाबा के साथ ऊपर से सकाश सारे विश्व को देते रहो। ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आप व्यर्थ से बिल्कुल फारग हो गए, आपको व्यर्थ का ख्याल ही नहीं आएगा। और फिर इसके साथ में आपका समय कितना सफल हो रहा है वो आपको महसूस होगा। इसकी रिजल्ट क्या मिलती है? इसकी रिजल्ट मिलती है, पुराने जो भी कोई नेगेटिव संस्कार होते हैं वो सब मिट जाते हैं। वैसे उनके लिए हम सोचते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे बाबा को, ये मेरे अभी तक नेगेटिव संकल्प आते हैं, ये आते हैं, वो जाएंगे नहीं। सिर्फ लिखने से जाते नहीं हैं, उसको भस्म करना पड़ता है, और भस्म करने का तरीका है योग अग्नि। बाबा के साथ मन लगा के इतना शक्तिशाली स्थिति में बैठें, इतना रहें कि वो उस योग अग्नि में व्यर्थ भस्म हो जाए। बाकी क्या रह जाएगा? जो सच्चा सोना है आत्मा, वो अपने असली स्वरूप में वापस आ जाएगी। तो आज का दिन विशेष दिन है, साल का अंतिम दिन और फिर बाबा के आने का दिन। तो ये इस बात को थोड़ा दिल में अच्छी तरह से पक्का कर लें कि ऐसे शुभ दिन पर हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो संपूर्ण दिव्यता है उसको धारण करें, दैवी गुणों को धारण करें, दैवी संस्कारों को धारण करें, और जो हमारे अंदर कमजोरी के संकल्प हैं, कमजोरी के संस्कार हैं, व्यर्थ के संस्कार हैं, उसको त्याग दें, भस्म कर दें, छुट्टी कर दें उनकी। फिर देखो आपको अपने आप से कितना सुख मिलेगा। पराधीन सपने सुख नहीं, सुना है ना? अगर व्यर्थ संकल्पों के अधीन होते रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सोचिंतन और बाबा की याद, इसमें जितना सुख है, जितना आनंद है, वो और किसी चीज में नहीं है। कई बार ये प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण इतना मुस्कुराता हुआ क्यों देखने में आता है? देखा है श्री कृष्ण का चित्र आपने कि नहीं देखा है? देखा तो है ना, चाहे किसी किसी जगह भी देखेंगे, चाहे मूर्ति में देखो, चाहे चित्र में देखो, प्रिंटेड हो, कुछ भी हो, श्री कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हो, हमेशा निस्वार्थ भाव से मुस्कुराता है। तो वो भी एक अपने लिए भविष्य का लक्ष्य बन जाता है कि जब श्री कृष्ण जैसा मन इतना निर्मल हो जाएगा, सबके प्रति एक ही भाव, प्रेम का भाव रहेगा, और साथ साथ हरेक के लिए कल्याण की भावना रहेगी, तो आपका मन भी श्री कृष्ण जैसा बन जाएगा। अभ्यास मन मना भाव का करना है, बाबा की याद को कहते मन मना भाव, मन मेरे साथ लगाओ, लेकिन उसके फल स्वरूप बन क्या जाएंगे, जो ब्रह्मा बाबा बनता है उसके समान बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा जाकर के श्री कृष्ण बनते हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा कहते अकेला श्री कृष्ण वहां राज नहीं करेगा, साथ में सारा परिवार होगा, ईश्वरी परिवार, सो भविष्य में दैवी परिवार बनेगा, उसके हम सदस्य होंगे, ऐसी भावना से अपना पुरुषार्थ करना है। तो अभी फिर से मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि आज के बाद, अभी भी अगर किसी को व्यर्थ संकल्प करने हो या व्यर्थ समय को बर्बाद करना हो तो हाथ खड़ा करें, जिसका भी मन हो करने का। सभी हंस रहे हैं, खुशी की बात है कि कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम बर्बाद करें। तो बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आबाद करेंगे। और आबाद करने का सहज तरीका क्या है? सहज तरीका सबके प्रति शुभ भावना रखना, सबके प्रति शुभ भावना। कोई कोई को देखते हैं तो उनके अच्छी बात कोई देखिए। कल की मुरली में था, बात करते हो तो अपने आप को आत्मा निश्चय करके फिर बात करो। इसी तरह से खुद को निश्चय करेंगे तो दूसरे को क्या देखेंगे, उसको भी आत्मा रूप में देखेंगे। और सभी आत्मा हमारे भाई हैं, शरीर में आते तो भाई और बहन हैं। इतना सुंदर भाव रहता है उसमें, अपनेपन का भाव रहता है, खुशी होती है, और उसकी रिजल्ट ये है कि मन बहुत 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 खुश रहता है। और जितना खुश रहता है उतना लाइट रहता है, लाइट रहता है तो लाइट की तरह उड़ करके बाबा के पास जाना सहज होता है। तो अभी सब लाइट होके बैठे हैं ना, लाइट हैं, भारी हैं, सब लाइट हैं, चलें, उड़ें, उड़ने को तैयार हैं, ओके, तो फिर थोड़ा सीधा होके बैठ जाओ। क्योंकि आज का दिन कमाई करने का दिन है, सच्ची कमाई। तो अभी इसी संकल्प से कि सब हम बाबा के सतो प्रधान बच्चे, हम आत्माएं बाबा के पास मन मना भाव के रूप में परमधाम निवासी, और फिर साथ साथ जो हमारे परकंपन हैं, ये हमारे सृष्टि को हमारे रहने योग्य बनाने के लिए, पांचों तत्वों को पावन बनाने के लिए, वो परकंपन हम इस सृष्टि को भी देंगे, जिसमें सब देश विदेश के भाई बहने भाई बहने, जब मैं कहता हूं तो सिर्फ बीकेज नहीं, सब भाई बहने, कितना 7 बिलियन बोलते हैं, 700 करोड़, इतने सब तक पहुंचे। आप सोचो, इतने सब भाई बहने मिल करके जब इतना जोरदार बाबा की याद का संकल्प करेंगे तो बहुत शक्तिशाली है। वो तो एटम बम की बात करते हैं, ये आत्मा का जो स्वरूप है बहुत शक्तिशाली बन जाता है, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता है। वो तो आपको बाद में लोग मिलेंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वो बताएंगे कि हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा उस दिन बाबा आए, जिस दिन बड़ा आनंद आया, बहुत मन हमारा भी खुश हुआ। ठीक है, बहुत बड़ी सेवा है ये, लेकिन सूक्ष्म सेवा है। तो चलिए उड़े, चलना नहीं उड़ना है, आत्मा उड़ती है। पहले तो इसी निश्चय में आओ कि हम आत्माएं हैं, ज्योति स्वरूप हैं, और यहां से साकार दुनिया से ज्योति की दुनिया में जाते हैं, और बाबा भी ज्योति के स्वरूप में हैं।
शिव पिता को अब याद पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में अब तुम्हें